from the conference center.
Salt Lake Sahar ke Temple Square ke sammelan sand kendra se ye shanivar subah sabha ka Yeshu Masih ka girjaghar antim dino ke santo ka 185th varshik mahasammelan hai jiske bhashankarta girjaghar ke mahadhikariyon aur mahapad adhikariyon mein se chune gaye hai Momon Tabernacle Twar Gayak Mandali dwara is sabha ka sangeet pradan kiya jayega गिरजाघर के सदस्य और अधिकारी दुनिया के सभी भागों से आए ताकि अपने गिरजाघर नेता से सलाह और आप आदेश प्राप्त कर सके
This broadcast is
Barnabal Distribution द्वारा इस प्रसारण का जनता सेवा के रूप में प्रति की गई है इस कार्यक्रम का कोई भी पुनर्प्रादन अभिलेखन प्रतिलेखन या अन्य इस्तेमाल बिना लिखित अनुमति की मना है प्रधान डेटा एफेक्टिव गिरजाघर के प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार इस सभा का संचालन करेंगे भाई और बहनों हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के 185th वार्षिक महासम्मेलन के पहले बैठक में और खास तौर पर स्वागत करते हैं उन सदस्यों और दोस्तों को जो इस सम्मेलन केंद्र में विश्व भर से भाग ले रहे हैं प्रधान थॉमस एस मॉन्सन जो सम्मेलन के अध्यक्ष कर रहे हैं ने कहा कि मैं इस सभा का संचालन करूं हम उन महाअधिकारियों और महासहायक अध्यक्षताओं को आभार प्रकट करते हैं जो सम्मेलन में उपस्थित है इस सभा का संगीत मोमन टैबरनेकल गायक मंडली द्वारा रहेंगे मैक वुलबर्ग और रायन मैफी के निर्देशन में जिनके साथ एंड्रू वांसवर्थ और क्ले क्रिस्टेंसन ऑर्गन पर रहेंगे गायक मंडली ने इस बैठक का शुरुआत गाइड अस ओ ग्रेट यहोवा गाकर किया और अब हमारे लिए गाएंगे ग्लोरी टू गॉड ऑन हाई शुरुआत प्रार्थना फिर एल्डर टिमोथी जे डाइक्स जो 70 का है द्वारा बोला जाएगा
Our Father who art in heaven.
Hey, Pitchor, keep it up, Parmeshwar. ये पहला सेशन के लिए हम इकट्ठा हुए हैं और हम आपका अधिकारी हैं अपने भविष्यवक्ता प्रेसिडेंट थॉमस मॉन्सन के लिए और कॉरम ऑफ द 12 अपोस्टल्स के लिए और उन्हें हम जानते हैं और उसे सस्टेन करते हैं हम अधिक धन्यवाद देते हैं गॉस्पल के लिए जो हमें आप तक पहुंचाएगा, और हम यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं जिसकी जिंदगी और बलिदान हमें आपके पास लाएगा। और हम दुनिया भर में इकट्ठा हुए हैं कि हम आपके वाणी को सुने, और जिनसे जो हमें गाना गाएंगे और जो हमें सिखलाएंगे कि हमारे हृदय खुले रहें, कि हम आपके आत्मा को महसूस कर सकें और हम अच्छाई के कार्य में लगे रहें, और कि वाणी हमारे हृदय पर आए और हम अच्छे कार्य में रहें। और ये सब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन।
We will now be pleased.
अब हम प्रधान हेनरी बी आयरिंग का भाषण सुनेंगे, जो 70 अध्यक्षता के पहले सलाहकार हैं। उसके भाषण के बाद गायक मंडली Have I Done Any Good को गाएंगे। गीत गाने के बाद हम प्रधान बोर्ड के पैकर, जो 12 देवतों के प्रसाद के प्रधान है, को सुनेंगे। उसके बाद बहन लिंडा के बर्टन, सहायक संस्था महाप्रधान है, भाषण देंगी।
My dear brothers,
मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आज यीशु मसीह की गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का महासम्मेलन में अपना प्रेम व्यक्त करूं। ये खुशी आत्मा की गवाही से आती है कि उद्धारकर्ता के प्रेम तुम सब तक पहुंचता है और स्वर्ग के पिता के सभी बच्चों तक। हमारे स्वर्ग के पिता चाहता है कि वो अपने बच्चों को धार्मिक और सांसारिक आशीर्वाद दे। वो हमारी सभी ज़रूरतों, पीड़ों और आशाओं को जानते हैं। जब हम उनको सहायता देते हैं, उद्धारकर्ता महसूस करता है कि हम उनकी सहायता करते हैं। उसने हमें जो कहा वो सच है। जब उसने हमें भविष्य के एक पल के बारे में बताया, जब हम उन्हें जीवन के अंत में देखते हैं, उपवास और प्रार्थना करके आज के भाषण के बारे में पूछने के बाद मेरे मन में एक चित्र और साफ दिखने लगा है उस भविष्य के अर्थ के बारे में उनके चेलों को दिया गया था। तब राजा अपनी दहनी और वालों के से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी जो हो जाओ जो जगत के शुरुआत से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी दिया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मुझे भेंट किया। तब धर्मकारी उसको उत्तर देगा, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखकर और अपने घर पर ठहराया, या नंगा देखकर कपड़े पहनाए? हम कब तुझे बीमार या जेल में देखा और तुझे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के भी साथ किया, वो मेरे साथ किया। मैं तुम और हम धर्मकर्ता के से वैसा स्वागत चाहते हैं, मगर हमें ये कैसे मिल सकता है? कितने सारे नंगे बेघर यतीम बच्चे हैं स्वर्ग के पिता की हम पहुंच नहीं सकते, और संख्य हमारे पकड़ से ज्यादा होती रहती है। इसलिए प्रभु ने हमें सबसे केयर करने लायक चीज दी है। ये नियम इतना सरल है कि एक बच्चा उसे समझ सकता है। ये नियम के साथ एक बढ़िया विधा वादा दिया जाता है जरूरतमंदों और हमारे लिए। ये है उपवास का नियम। अजाया के पुस्तक के शब्द प्रभु का विवरण है कि नियम का हम जो उनके गिरजाघर के है कि के लिए आशीर्वाद का जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ क्या वो ये नहीं है कि अन्य से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का ज्योता को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए जो अपने घर ले आना, किसी को नंगे देखकर वस्त्र पहनाना, या जाति भाइयों से अपने से ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश सुबह की तरह चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, प्रभु की महिमा तेरे पीछे रक्षा करते हुए चलेगा। तब तू पुकारेगा और प्रभु उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे और उद्धारकर्ता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर से उजियाला हो जाएगा और प्रभु तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल से समय तुझे संतुष्ट और हड्डियों को हरी भरी रखेगा। इसलिए प्रभु ने हमें एक सरल नियम दिया है, एक बढ़िया वादा के साथ। आज गिरजाघर में हमें मौका मिलता है महीने में एक बार उपवास करने के लिए और एक अच्छा दान देना अपने विशेष या सहका अध्यक्ष के जरिए करीब और ज़रूरतमंद की मदद के लिए। कुछ लोग अपने आसपास के लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, शायद तुम्हारे अपने परिवार में प्रभु के सेवक प्रार्थना और उपवास करेंगे ताकि उन्हें प्रकटीकरण मिले किसी मदद करना और क्या देना है जो तुम्हारे स्थानीय गिरजाघर के इलाके में नहीं जरूरी है। दुनिया भर में अन्य जरूरतमंद गिरजाघर सदस्यों को देना दिया जाएगा। गरीब और जरूरतमंद के लिए उपवास करने के नियम के साथ कई आशीर्वाद है। प्रधान किम्बल ने इस नियम को ना पालन करने को भूल का नियम कहा है, जिस पर बहुत बड़ा जुर्माना है। उसने कहा, प्रभु ने अच्छे वादे किए उससे जो उपवास करते हैं, जरूरतमंद की मदद करते हैं, प्रेरणा और धार्मिक निर्देशन मिलेगा सब में स्वर के पिता की सच्चाई और करीबी के। अगर हम उपवास के सच्चे काम को भूल जाएंगे हमें ये आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कुछ दिन पहले मुझे एक आशीर्वाद मिला क्योंकि महासम्मेलन के एक सप्ते में अंत में जब उपवास और गवाही का सभा लगा, मैंने उपवास और प्रार्थना किया कि कैसे मुझे ये नियम का पालन करना चाहिए जरूरतमंद और मदद करने के लिए। शनिवार को उपवास करते हुए मैंने 6 बजे उठा और फिर से प्रार्थना किया। मुझे लगा कि मैं टीवी की समाचार को देखना चाहिए। वहाँ मैंने ये पढ़ी, समुद्र तूफान प्रेम की कई घर उजाड़े जब उसने पोर्टविला का आक्रमण किया, वनवातु में उसे 6 जाने ली। ये पहला रिपोर्ट था एक बहुत शक्तिशाली तूफान का जो जमीन पर पड़ा। एक पेड़ भी नहीं सीधा खड़ा रह सका जो तूफान इस प्रशांत से दूर पर चला। वर्ल्ड विजन के आपातकाल निरीक्षण विभाग ने तूफान से जाने का भाग करने की सोची। उसके कर्मचारी ने सोचा कि उनके लिए उनके कई किए गए तैयारियों के नियम नौशक किया गया होगा। उन्होंने साफ पानी, भोजन, कंबल, टैपलिन और शरण सफाई के सम्मेलन को रसोई की चीज़ों को कुछ खास जगहों पर रखी थी तूफान से पहले। जब मैंने ये पढ़ने के बाद मैंने याद किया वनवातु के घरों को, मैंने उनके बारे में सोचा जो घरों में थे जिससे तूफान ने बर्बाद किया था, और फिर मैंने वनवातु के लोगों का हार्दिक स्वागत किया। मैं सोच रहा था कैसे वो अपने पड़ोसी हमारे सीमेंट की चैपल में सुरक्षा पाएंगे। फिर मैंने सोचा कैसे बिशप और सहायक संस्था अध्यक्ष उनके बीच चलेंगे, उन्हें सम्भूति देंगे, कंबल भोजन और पानी दिए होंगे। मैं उन धरे हुए बच्चों के बारे में सोच रहा था, वो कितने दूर है जो घर से ज़्यादा मैं वो खबर पड़ा था, और फिर भी मैं जानता था कि प्रभु क्या कर रहा होगा अपने सेवकों के जरिए। मैं जानता था कि वो वही उपवास भेंटों की ने स्वर्ग के पिता की उन बच्चों की सहायता की हो जो प्रभु के चेलों द्वारा दिया गया था, जो दूर हो है पर प्रभु के करीब। इसलिए मैंने रविवार तक इंतजार नहीं किया। मैंने अपने बिशप के पास उसी दिन सुबह उपवास भेंट ले गया। मैं जानता था कि ये दान बिशप और सहायक संस्था अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा किसी पड़ोसी के मदद के लिए, मगर मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो खुश होंगे प्रभु के लिए की सहायता करने के लिए। मेरा छोटा दान शायद मेरे नज़दीक किसी को नहीं मदद करेगा, और शायद उसका बचा हुआ कभी वनवातु ही नहीं पहुँचेगा। मगर अन्य तूफान और दुर्भाग्य घटने उन लोगों पर भी आते हैं जो प्रभु से प्रेम करता है और जिनके दुख हैं। तुम्हारा और मेरा उपवास भेंट का कुछ भाग इस महीने उसके लिए होगा जो कहीं पर जिसका सहायता प्रभु महसूस करेगा जैसे उसका अपना हो। तुम्हारा उपवास भेंट खिलाने और कपड़े पहनाने से ज्यादा करेगा। वो चंगाई देगा और हृदयों को बदलेगा। दिल से दिया गया दान का फल पहने वाले की इच्छा होगी। ऐसा बहन एबी तुरे के लिए में हुआ जो सेरालियोन में रहती है। 1989 में एक असैनिक युद्ध शुरू हुआ। ऐसे कई सालों तक देश सेरालियोन को तो दुनिया का गरीब देश था। ये युद्ध के द्वारा ऐसा स्पष्ट नहीं था कि कई देश का शासन कर रहा था। भेद बंद, सरकारी दफ्तर बंद हो गया था। ऐसे समय में भी गिरजा बढ़ता गया। एक सबसे पहले शिक्षा आयोजित किया गया था बहन तुरे के शहर में। उसका पति पहला शिक्षा अध्यक्ष था। ऐसानिक युद्ध के दौरान वो जिला अध्यक्ष थे। जब कोई बहन तुरे के घर जाता था, वो उन्हें युद्ध के समय जो दिखानत करती थी, एक नीला और सफेद दरीदार शेड जो कि जगह सदस्य के भेंट थे में उसे मिला था। पुराना हो चुका था, चिरल पर गया था। वो कहती थी, ये शेड पहला कपड़ा था जो मुझे मिला। मैं उसे काम पर पहनते थे लिए पहने करती थी। ये कितना अच्छा है, मेरे पास अन्य कपड़े नहीं थे। युद्ध के दौरान ये कंबल हमें गर्मी देता है, मुझे, मेरे बच्चों को। जब आतंकवादी हमें मारते हैं, यही हम उतर सकते हैं। ये हमें गर्मी देता है और मच्छरों से बचाता है। बहन तुरी एक मिशन अध्यक्ष से के भरे में अपना आभार बतलाती है जो आता है युद्ध वाले देशों में से भरे लेकर। वो पैसे किसी के उपवास भेंट के पैसे से होते हैं जिससे संतों को भोजन खरीदने के लिए मिलता है। गिरजाघर का कोई भी सदस्य युद्ध के दौरान भूख के कारण मरा नहीं सकता। बहन तुरी उनके बारे में कहते हैं जो उन्होंने दान दिया ताकि वो जीवित रह सके। जब मैं ऐसा करने वाले लोगों में सोचती हूँ, वो कहती है, मुझे एहसास होता है परमेश्वर ने भेजा है। कुछ दिन हुए यूनाइटेड स्टेट्स के से आए एक मेहमान एबी के साथ बैठा था। उसके साथ इस समय द्वारा उसके अंत शिव धर्म शास्त्र के किताबों पर जाते रहते जो एक मेज पर था। वो बतला सकता था कि वो एक खजाना था, अच्छी तरह से मार्क किया गया और बनाए गए कॉलम में। उसने धर्मशास्त्र अपने हाथों में लिए और धीरे से पढ़ाने लगे। अभिटुरे ने अपने द्वासा हिस्सा में $1 दिया, प्राचारक पुण्य में $1 और उपवास भेंट में $1 दिया उनके लिए जो वो कहते थे सच में गरीब थे। मेहमान ने बहानटूरे के धर्मशास्त्र बंद किए और सोचा इस विश्वासी अफ्रीकन माता के साथ खड़े हुए कि वो पवित्र भूमि पर है, जिस तरह से अपने और मैं मेरे उपवास भेंट आशीर्वाद हृदय बदल सकते हैं, उसी तरह किसी एक के फायदे के लिए उपवास करना भी कर सकते हैं, एक बच्चा भी महसूस कर सकता है। कई बच्चे और कुछ बालिग लोग शायद निजी तरह अजया के शब्दों में ऐसा महसूस हो सकता है कि उपवास ने उनके हृदय को छू लिया है। प्रेसिडेंट जोसेफ स्मिथ ने जो कहा है, बेहतर है उन्हें सिद्धांत सिखाना और उन्हें मौका देना उसके पालन करना जब वो उन्हें बढ़ने होता है। मैंने हाल ही में इस सलाह में आशीर्वाद देखा। मेरे एक पोता ने महसूस किया था 24 घंटों का उपवास किया था, मगर उसके बुद्धिमान माता पिता ने भी वो सिद्धांत उसके हृदय में लिया। उसके एक पाठशाला के दोस्त ने अपने छोटे चेहरे भाई अचानक मृत्यु में हो गया था। मेरे पोते ने अपनी माँ से उपवास दिन पर कहा, उस समय पर जब वह उपवास बहुत कठिन लग रहा था, क्या मेरा शोक मना रहा था दोस्त अच्छा महसूस करेगा अगर मैं उपवास करता हूँ। उसका सरल प्रधान जोसेफ एफ स्मिथ के सलाह के पुष्ट थी। मेरा पोता अब सिर्फ उपवास के सिद्धांत को नहीं समझ सका, मगर उसने उसके हृदय में जगह पा लिया था। उससे अब महसूस होने लगा था कि वो उसका उपवास प्रदान से किसी जरूरतमंद को परमेश्वर का आशीर्वाद मिल सकता है, उसे आत्मिक आशीर्वाद मिलेगा और ज्यादा संभावना शक्ति। हम सभी कारणों को नहीं जानते क्यों यीशु मसीह बंजार भूमि में गए उपवास और प्रार्थना के लिए, मगर हम जानते हैं उद्धारकर्ता ने अच्छे तरह से शैतान के बहकावों से बचा था, जिस छोटे समय के लिए हम हर महीने उपवास करते हैं, जो छोटे भेंट हम गरीब को देते हैं, शायद सिर्फ एक छोटा सा बदलाव लाए। अब दुष्कर्म करने की उसकी इच्छा नहीं है, मगर एक बढ़िया वादा दिया गया है, जब हम सब करें जरूरतमंद लिए प्रार्थना उपवास और दान रहे, तेरा प्रकाश तब तू पुकारेगा और प्रभु उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें छोड़ दोगा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम आशीर्वादें अपने और अपने परिवार के लिए चाहें। मैं गवाही देता हूँ कि यीशु ही मसीह है, कि उनके गिरजाघर में हमें आमंत्रित किया जाता है और उनकी तारीख से गरीब की मदद करते हैं और कि वो आनंद आशीर्वादे वादे करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
कई साल पहले विश्वास युद्धों के बाद मैं कॉलेज में था जब मैं डोना स्मिथ से मिला. उस समय मैंने पढ़ा था कि सफल विवाह के दो जरूरी तत्व है, एक मीठा बिस्किट और एक चुम्मा. मैं सोचा ये डोना तो सही है. मैं सुबह पढ़ा करता था, मैं फिर शाम को वापस ब्रिंघम शहर लौटता जाता था. डोना के सुबह को आखिरी कक्षा था होम इकोनॉमिक्स का. मैं जाने से पहले उससे कक्षा के बाहर रुका. दरवाजा में एक धुंधली शिक्षा था, मगर जब मैं उसके करीब खड़ा होता हूँ वो जान जाती है मैं बाहर हूँ. वो बाहर आती एक मीठा बिस्किट और चुम्मा के लिए. और सब इतिहास है. सालों से मैंने लगातार एक ज़रूरी सिद्धांत सिखलाया है. गिरजाघर सभी गद्यवृत्ति का अंत होगा कि एक पुरुष और एक महिला अपने बच्चों के साथ घर पर खुश है और एक दूसरे के साथ बंधे हैं समय और आनंद के लिए हैं. शुरुआत में ईश्वरों नीचे गए मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाने के लिए, ईश्वरों के प्रतिरूप में आदमी को बनाया. उन्होंने स्त्री और पुरुष बनाया और ईश्वरों ने कहा हम उन्हें आशीर्वाद देंगे, और ईश्वरों ने कहा हम उन्हें दुगना होने देंगे और धरती को भरपूर करने और संभालने देंगे. और इस तरह मानव जीवन का शुरुआत हुआ इस धरती पर जब एडम ने अपनी पत्नी के साथ हुआ और वो उस पुत्र और पुत्रियों दिया और उन्होंने धरती को आबाद करने और संभालने था. और आदम के पुत्र और पुत्रियां धरती पर अलग दो दो कर अलग होने लगे और उन्होंने भी फिर पुत्र और पुत्रियां जाने. धरती को दुगने करने और आबाद करने के नियम को कभी रद्द नहीं किया गया है. ये मुक्ति के योजना के लिए आवश्यक है और मनुष्य के खुशहाली का जरिया है. इस शक्ति की सही इस्तेमाल से हम स्वर्ग के पिता के करीब आएंगे और खुशहाली की पूर्ति अनुभव करेंगे. ये यहाँ तक कि ईश्वर तब भी खुशहाली की योजना में पैदा करने की शक्ति का महत्व काम नहीं है, वो खुशहाली है. जुड़ा लगाने की इच्छा मनुष्य जाति में निरंतरण और बहुत जोरदार है. मरणशील जीवन में हमारी खुशहाली, हमारा आनंद और उनंद होने उस पर निर्भर है कि कैसे हम इन लगातार धमतार शारीरिक वासना के जवाब में पेश आए. जब पैदा करने की शक्ति जवानी के समय उभाती है बहुत नीची एहसास होती है एक प्रकृति धन से, अन्य किसी शारीरिक अनुभव के जैसा नहीं. वैसे तो संभव रोमांस के साथ शुरू होता है. भले ही रिवाज अलग हो, वो सही किताबों की कहानी के साहस और प्रकृति के साथ संपूर्ण होता है. कभी कभी आशीर्वाद भी. उस समय चांदनी और गुलाबें, प्रेम पत्र, प्रेम भरी संगीत, शरीर ही हाथ पकड़ना और प्रेम के अन्य इशारे होते हैं जवान पुरुष और जवान महिला के बीच. उस जोड़े को दुनिया नहीं देखता और वो खुशहाली की एहसास अनुभव करते हैं. और अगर तुम सोचते हो कि जवान रोमांचक प्रेम का प्रणाम सुख युग संबंध से ही मिलता है, तुम्हें अभी तक जीवन में लंबे समय की विवाहित प्रेम का लगन और सहेलित नहीं देखा है. विवाहित धर्मपत्नियों को लालच गलती फहमी समस्या परिवार संकट बीमारी से आजमाया जाता है पर फिर भी प्यार मजबूत होता रहता है। पूर्व विकसित प्रेम का एक प्रणाम आनंद है जिसके कल्पना नए वैश्विक धर्मपति भी नहीं कर सकती। सच्चा प्रेम में विवाह के बंध तक हुआ एहसास को थाना होता है जैसे जीवन के पवित्र शक्तियां बाहर आती है जीवन दे के लिए। इसका मतलब है उन स्थानियों में ना पड़ना जिससे शारीरिक इच्छा तकवर हो जाए। पवित्र प्रेम ये चाहता है कि अनंत तक ईमानदारी वादा रहे, एक कानूनी और वह मात्विक समूरन हो और मंदिर में बंधने के बाद ही वो पैदा करने की शक्तियां परमेश्वर के नज़र में दी जाती है। प्यार को उन रूप से जाकिर किया जाता है, उस सिर्फ अपने हमेशा के साथी की ही साथ हाथ बता जाना चाहिए। जब पूरे सफाई से इस वादे में दाखिल होते हैं, इस प्रक्रिया में सबसे उत्कृष्ट और उत्तम शारीरिक भौतिक और आत्मिक एहसास होता है जो प्रेम बंध से जुड़ा होता है। जीवन के उस भाग में कोई एक जैसा नहीं जुड़ा नहीं, सारे मानव अनुभव में जब वचनों को बनाया और निभाया जाएगा वो आनंद तक चलेगा, क्योंकि उससे मैं पवित्र प्रोहिति की चाबियां को नियुक्त किया जाता है ताकि हम सम्मान और महिमा पाएं, जो महिमा से तुम्हारे बच्चे हमेशा हमेशा के लिए ज्यादा होते रहेंगे। मगर रोमांचिक प्रेम अधूरा है, वो तो सिर्फ एक आरंभ है। प्रेम उभरता है बच्चों के आने से, जो उसे पैदा करने के शक्ति से आता है जो विवाह में दंपतियों को दिया जाता है। गर्भधारण पति और पत्नी के विवाहित मिलन से होता है। एक छोटा शरीर पालने लगता है एक भद्या पैरीय से, एक बच्चा आता है जन्म के चमत्कार से, अपने धरती के माता पिता के पवित्र रूप में रक्षा हुआ। उसके मरणशील शरीर में एक आत्मा है जो आत्मिक चीजों से महसूस और जान सकती है। बच्चे के मरणशालिक शरीर में भी एक शान शक्ति है अपने पति रूप में बच्चा पैदा करने की। आत्मा और शरीर आत्मी की आत्मा है और वहाँ आत्मिक और शारीरिक कानून है पालन करने के लिए। अगर हमें खुश रहना है वो आनंद कानून है जो जीवन देने की इस शक्ति से जुड़े हैं, जो स्वर्ग में बना था दुनिया के शुरुआत से, जिससे मिटाया नहीं जा सकता, जिस पर सभी आशीर्वादों टिकी है। ये आत्मिक कानून है जो मनुष्य के स्तर को बदलाती है। वहाँ वचनों है जो जुड़ती है, बनती है और सुरक्षा और वादे देती है आनंद आशीर्वादों के। अल्मा अपने बेटे सिबलोन से समझाता है, देखो कि तुम अपनी उत्तजनों पर लगाम रखो जिससे कि तुम प्रेम से परिपूर्ण रहो। लगाम रख दिखाने, निर्देश करने और रुकने के लिए होता है। हमारे उत्तजनों को काबू में रखना है जब विधि पूर्वक इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चे पैदा करने की शक्ति आशीष देगी और शुद्ध करेगी। लालच हमेशा रहेगा क्योंकि शैतान जीवन नहीं पैदा कर सकता, वो सबसे जलन करता है जिससे पास वो महान शक्ति है। वो और उनके चेलों को निकाला गया था और उन्हें शरीर इन लिए गया था। शैतान तो ये चाहता है कि सारे मानव समाज उसकी तरह आशीन हो जाए। वो लालच देगा कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, दूषित कर सकता, और अगर मुमकिन हो तो इस उपार को नाश करने, जिसे हम अगर हम योग्य रहे आनंद बहरंती पाए। अगर हम इस जीवन देह के शक्ति को मैला करेंगे, ये एरन औरों को उसका दुरूप करें मगर धूंगे और उसके आलमा ने अपने बेटे कोरिंथियम को बतलाया, मेरे बेटे क्या तुम नहीं जानते कि ये तरह के कर्म प्रभु के लिए करिणपूर्ण है? हाँ, ये केवल निर्दोषन को रक्त बनाएगी और पवित्र आत्मा को अवश्यकार करेगा को छोड़कर सबसे अधिक कर्म है। पति पत्नी के बीच जीवन लाने के शक्ति का सच्चा अधिशेख पूर्ण इच्छा कानून और विधि से विवाह होने की बंध होता है। इसके बच्चे कोई और कार्य परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करता है। शैतान के गदिया लालच में मत पड़ना, क्योंकि पाप के हर कर्ज को चुकाना पड़ेगा। जब तक तुम गाड़ी घड़ी भार ना दे, सिर्फ पश्चाताप में ही परमेश्वर का ज्यादा उदारता और दया दिखाता है। जब हमारे शरीर में चोट लगती है वो खुद ठीक कर लेता है, कभी कभी एक डॉक्टर के मदद से। अगर चोट भरी है, बड़ी है, तब एक दाग हो छोड़ की याद सा रह जाता है। हमारा आत्मा देह के साथ तो अलग होता है। जब हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, तब हमारे आत्मा को चोट पहुंचती है, मगर ये हमारे मनशालिक देह से तरह नहीं है। इसमें जब पश्चाताप पूरा होता है, यीशु मसीह के पश्चाताप के हमारा कारण कोई दाग नहीं बचता। वादा ये है, देखो उससे जिसने अपने पाप का पश्चाताप कर लिया, माफ किया जाएगा और मैं प्रभु उसे कभी याद नहीं करूंगा। जब हम विवाह और पवित्र वेग जीवन की बात करते हैं, तब मन में हमेशा आता है चौड़ाई का क्या होगा। कुछ लोग की कमियां पैदेश से होती है और वे बच्चा नहीं पैदा कर सकते। कुछ बेकसूरों का विवाह नष्ट हो जाता है उनके पति पत्नी के बेवफाई के कारण। अन्य लोग कभी विवाह नहीं करते और अकेलेपन पर योग्य जीवन जीते हैं। अभी के लिए नहीं, ये आश्वासन देता हूँ, परमेश्वर हमारे पिता है। जितना प्रेम और दया एक धरती वाले पिता में है, उन्होंने दुगना हो जाता है जो हमारे आशीम पिता और परमेश्वर है। उनके नियम सही है, उनका दया के कोई सीमा नहीं। उसका शक्ति बराबर कर देगा जो धरती से तुलना से बाहर है। यदि हम केवल इसी जीवन में मेज से आशा रखते हैं, तो हम सभी मनुष्य से अधिक अभाग्य हैं। अब मैं मंदिर शब्द सम्मान पूर्वक इस्तेमाल करूंगा। मैं कल्पना करता हूं एक बंधे कमरे और वेदी का, जहां एक जवान दंपति घुटने पर बैठे हैं। यह पवित्र मंदिर धर्मविधि एक विवाह से भी बंद कर है, क्योंकि इस विवाह का वचन के पवित्र आत्मा द्वारा बंधे जाएंगे और धर्मशास्त्र में कहा है कि तुम शिंशा राज्य रियासत और शक्तियां शासन पाओगे। मैं वह खुशियाली दे सकता हूँ जो उनके लिए है जो इस महान उपहार को गर्म कर और योग्य रूप से इस्तेमाल करेगा। बहन डोना स्मिथ पैका और मैं 70 साल गुजरे हैं एक साथ विवाहित रूप में। जब मेरे पत्नी की बात आती है, हमारे बच्चे की माँ की, मैं अपना एहसास नहीं जाहिर कर पाता। वो एहसास इतना गहरा है और उसका आभार इतना शक्तिशाली कि मैं बिना एहसास की रह गया। हमारे जीवन और आने वाले जीवन का सबसे बड़ा इनाम रहा है हमारे बच्चे, हमारे नाती पोती, हमारे साथी समाचार। मैं गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह है जीवित परमेश्वर का पुत्र। वो इस गिरजाघर के मुखिया है। उसके प्रायश्चित और पुरोहित की शक्ति के द्वारा प्रवरिन जो मरणशीलता में शुरू हुई आनंद तक साथ रहेगी। यीशु मसीह का पश्चाताप हमें मिलेगा और हमको बच, और हम ऐसा कोई भी कार्य करें अगर जो हम पश्चाताप करें, वो हमें वादा करता है कि वो हमें बचाएगा। कि अगर हमें कोई भी दुख हो, हमें पापों से, वो हमें क्षमा मिलेगा उसके पश्चाताप के द्वारा से। और प्यार से और आनंद तक। मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु यीशु मसीह के आशीर्वाद के लिए, उसके शक्ति के द्वारा जो ये शक्ति मिला हमें पैदा करने के लिए, कि उसकी मुक्ति के लिए, उसके पश्चाताप के, उसके पश्चाताप जो हमें साफ कर सकते हैं और हमें माफ कर सकते हैं। कितना गंभीर हो ये पश्चाताप हमें बचा सकता है ताकि हम आगे निकल सके, ताकि हम सफा हो सके, ताकि हम आगे और बढ़ सके। मैं गवाही देता हूँ इन सब का। ये पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह का है हम सभी के लिए। जो पश्चाताप का भाषा है वो हमें साफ करेगा। वो हमारे यीशु मसीह के नाम से, आमेन।
Next to the inspiring talks,
सम्मेलन के दौरान प्रेरणा भरे भाषण, संगीत और प्रार्थनाएं जो हृदय छू लेती है के अलावा, मुझे कई बहनों द्वारा बताया गया है कि वो जो देखना पसंद करती है जब प्रथम अध्यक्षता और 12 देवदूत के प्रस्तुति अपने पत्नी के साथ मंच पर से जाने के लिए। प्रधान बोर्ड के पेका ने अपने पत्नी डोना के बारे में बोलते हुए कहा, मैं जिस ऑफिस के नियुक्ति हूँ, मेरा एक पवित्र जिम्मेदारी है सच बोलना कि वो दोषीन है। वो मेरे जीवन का खुशी का जरिए है, कहा प्रधान डीडा एफ उगद्रोफ अपने पत्नी हैरियट के बारे में। प्रधान हेनरी बी आयरिंग ने अपने पत्नी कैथलीन के बारे में कहा, वो एक इंसान है जिसने हमेशा चाहा है कि मैं सबसे बेहतर रहूं। और प्रधान थॉमस मॉनसन ने अपनी पत्नी फ्रांसिस के बारे में कहा, वो मेरे जीवन का प्यार था, मेरे भरोसेमंद साथी और मेरा करीब का दोस्त। ये कहना कि वो मुझे याद आती है मेरे भावनाओं के गहराई को नहीं दिखलाता। मैं भी अपने प्रीतम पति क्रेग के लिए अपना प्रेम जाहिर करना चाहती हूँ। वो मेरे लिए एक बहुमूल्य उपहार है। मेरे पति के विषय में मैं कुलपति आशीर्वाद में एक चहिता और पवित्र वादा लिखा है कि मेरे और मेरे बच्चों के जीवन उनके द्वारा अच्छी परवरिश पाएगा। मुझे तो ये साफ दिखता है कि क्रेग उस वादे को पूरा करता है। आज मैं पतियों, पिताओं, भाइयों, बेटे और चाचा और मौसा का सम्मान करना चाहता हूँ जो जानते हैं वो कौन है और जो परमेश्वर के दिए भूमिकाओं को अच्छी तरह निभाना रहे हैं। कृपया ये जान लीजिए कि मैं जानती हूँ कि पवित्र पतित्राव मातृत्व और विवाह की चर्चा कई लोगों के लिए चिंताजनक हो सकती है। मैं जानती हूं कि कुछ गिरजाघर के सदस्य को लगता है कि उनके परिवार कभी आदर्शवादी परिवार नहीं बन पाए। कई लोग पीड़ित हैं ठुकराने जाने से दिव्या भर और गलत परंपराएं और संस्कृति के कारण। मुझे यकीन है कि एक पति अपने पत्नी के लिए सबसे आकर्षक लगता है जब वो अपने परमेश्वर के द्वारा दिए पुरोहित रखने वाले को भूमिका को पूरा करता है। मैं प्रधान पेका के इन शब्दों को पसंद और प्यार करती हूँ। तुम्हारे पास प्रभु के द्वारा दिया गया पुरोहित की शक्ति है अपने घर की रक्षा के लिए। कुछ समय ऐसे आएगा जब तुम्हारे परिवार और शैतान के बीच खड़ा होगा ये शक्ति रक्षा करने के लिए। कुछ पहले इसी वर्ष मैं एक अनोखे और साधारण व्यक्ति के अंतिम संस्कार में गया, मेरे पति के फुफा डोन का। फुफा डोन के एक बेटे ने अपने बचपन के अनुभव बतलाया। उसके माता पिता के घर खरीदने के बाद ये हुआ था। क्योंकि परिवार में खिलाने और पहनाने के लिए 5 बच्चे थे, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे आंगन में घेरा लगाने के लिए। उसने परिवार की रक्षा करने की भूमिका को गंभीरता पूर्वक लिया। फुफा डोन ने धरती में कुछ लकड़ी के खंभे डाला, कुछ रस्सी ली और आंगन को घेर दिया। उसने उसे खंभे और रस्सी दिखाई और समझाया उन्हें कि अगर वे घेरे के अंदर रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे। एक दिन भेंट करने वाले शिक्षक आए और देखते रह गए कि कैसे 5 छोटे बच्चे आज्ञाकृत से रस्सी को अंदर देखा और एक छोटा बच्चा दौड़ा अपने पिता को लाने के लिए, जिसने जवाब में दौड़कर गेंद ला लिया। बाद में अंतिम संस्कार में सबसे बड़े बेटे ने रोते हुए कहा कि उसने हमेशा इस जीवन में अपने प्रिय पिता जैसा बनना चाहता है। प्रधान एजरेटिव बेंसन ने कहा, हे इज़राइल के पतियों और पिताओं, तुम अपने परिवार के उदाहरण और अनंतता के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। इज़राइल में पिता होने का अपने पवित्र नियुक्ति को याद करो। तुम्हें ऐसा घर बनाने में मदद करनी चाहिए जहां प्रभु की आत्मा रह सके। अगर नामुमकिन नहीं तो कठिन तो होगा वचनबद्ध पुरुष होना इस दुनिया में, जहां उनके दिव्य भूमिका और जिम्मेदारी को ही नहीं कम महत्व दिया जाता है। असली आदमी का मतलब गलत नहीं निकालता है, एक गलत संदेश है। वे सब मेरे बारे में है। तराजू की दूसरी ओर एक कम आवश्यक और हंसी उड़ाने वाला संदेश है कि पतियां और पिताएं अब जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे जलन हो रही है। उससे जिनके पास ये पवित्र भूमिका है, उसने तय किया सभी मानव समाज उन्हीं की तरह आशाहीन हो जाए। भाइयों और बहनों, हमें एक दूसरे की जरूरत है। वचनबद्ध महिला और पुरुष होने के नाते हमें एक दूसरे को उन्नति तक पहुंचाना है और मदद करना है प्रभु के लोग बनाने में। हम एल्डर रॉबर्ट डी हेल्स और उनकी पत्नी मेरी की तरह कर सकते हैं इस कहावत को अपनाकर। तुम मुझे मदद करो और सहारा दो और मैं भी वैसा करूँगा और हम साथ प्रगति करेंगे। हम धर्मशास्त्र में से जानते हैं कि मनुष्य के अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए हमारे स्वर्गीय पिता ने उसके लिए एक सहायक बनाया। ये शब्द सहायक का मतलब है एक मदद करने वाला जो उनके समान, उसके लायक और उससे मेल खाने वाला। उदाहरण के तौर पर हमारे दो हाथ एक जैसा है मगर एकदम एक जैसा नहीं है। वास्तव में वो एक दूसरे के विरोध है मगर साथ अच्छे लगते हैं और सुंदरता बढ़ाते हैं। साथ काम करने से वो ज्यादा ताकतवर है। गिरजाघर के हैंडबुक में ये लिखता है, स्त्री और पुरुष की आत्माएं ऐसी है वो एक दूसरे को समपूर्ण करता है, एक दूसरे को संपूर्ण, न कि एक दूसरे से मुकाबला। हम यहाँ मदद करने, उन्नत और आनंद मनाने के लिए है। बहन बाबरा बी स्मिथ ने सिखलाया, कितना ज्यादा और खुशहाली मिल सकती है जब हम एक दूसरे के सफलताओं से खुश होंगे। जब हम मुकाबला करने के बजाय समपूर्ण करेंगे तब कितना आसान हो जाएगा प्रोत्साहन देना। जब मैं कई छोटे बच्चों की जवान माँ थी, मैं कितनी खुशी होती थी इस प्राथमिक गीत से, मैं कितना खुश होती हूँ जब पिताजी घर आते हैं। मुझे दुख होता है ये बतलाना कि मैं हमेशा हंसमुख नहीं होती थी। क्रेग दरवाजे से थके मंडे काम से घर आते थे, वो हमेशा हम सबको गले लगाकर और चुम्मा देकर मिलता था, जिससे कठिन और जटिल समय खुशहाल पिताजी का समय हो जाता था। मैं काम रोक कर और पवित्र परिवार समय के आनंद लेती और उससे धन्यवाद देती अक्सर हमारे जीवन को आशीर्वाद देने के लिए। गिरजाघर की एक बहन ने मेरे साथ अपनी एक गहरा चिंता जिसके बारे में वो प्रार्थना कर रही थी। उसका चिंता था वोट की बहनों से। वो कह रही थी कि उसे दुख होता था कि वे अपने पतियों से अनादार से बात करते देखना और उनके बारे में भी अपने बच्चों के सामने। उसे तब मुझे बताया कि जब वो एक जवान महिला थी तब उसने दिल से चाहा और प्रार्थना किया कि वो एक योग्य पुरोहित रखने वाले मिले शादी के लिए और उसके साथ वो खुशहाल घर बसाए। उसने अपने घर में नहीं देखा मगर मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया ये जानने के लिए कि कैसे वो अपने पति के साथ एक घर बसाए जहां आत्मा मौजूद रहे। मैं उसके घर गई हूं और गवाही देती हूं कि वह एक पवित्र जगह है। बहन और भाइयों, कितना बार हम जानबूझकर एक दूसरे से दया के शब्द कहते हैं। हम खुद की परीक्षा ले सकते हैं ये सवाल पहुंचकर, थोड़ी बदलाव के बाद ये सवाल हम सबके लिए सही हो सकते हैं। कब मैंने अपने पति पत्नी के प्रशंसा की थी, चाहे अकेले या हमारे बच्चों के सामने? कब पिछली बार मैंने उसे धन्यवाद दिया, प्रेम जाहिर किया या उसके लिए विश्वास से प्रार्थना किया? कब मैंने अपने आप को कुछ दुख पहुंचाने वाली बात कहने से रोका? कब आखिरी बार जब मैंने माफी मांगा और विनम्रता से क्षमा मांगी बिना ये शब्द कहे, पर अगर सिर्फ तुमने ये किया होता या पर अगर सिर्फ ये नहीं होता? कब आखिरी बार मैंने खुश रहने को चुना बजाय सही होने के मार्ग में? अगर इसमें से कोई सवाल से तुम बचे होते या कसूरवार महसूस करते, याद रखिए कि एल्डर डेविड ए. बेडना ने सिखलाया है कि कसूरवार महसूस करना हमारे आत्मा के लिए वैसा है जैसे पीड़ा शरीर के लिए। एल्डर जेफरी आर. हॉलैंड ने सिखलाया, भाइयों और बहनों, इस लम्हे अनंत कोशिश में जब हम हमारे उधारकर्ता के जैसा बनना चाहता है, हम संपूर्ण पुरुष और महिला बने सिर्फ इस तरह से अभी के लिए किसी को अपने बात से हानि ना पहुंचाए। इस मौके के लिए तैयारी करते समय आत्मा ने मुझे सिखलाया है और मैंने तय किया कि मैं दया के शब्द अक्सर अपने चहेते पति और से और उनके बारे में कहूंगी, ताकि अपने परिवार के पुरुषों को ऊंचा दर्जा दूं और उन्हें धन्यवाद दूं। क्या तुम मेरे साथ पवित्र आत्मा की मदद को ढूंढेंगे ताकि वो हमें सिखलाए हम कैसे एक दूसरे को समपूर्ण करें अपने नए भूमिका में? मैं जानती हूं कि यीशु मसीह के प्रायश्चित के शक्ति और हमारे विश्वास के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करती हूं कि हम उन पर भरोसा करें कि वो मदद करेंगे खुशी और आनंद से जीने में। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
The congregation.
Sabha ab khade hokar gayak mandali ke saath High on the Mountain gayenge. Is bhajan ke baad hum Elder Dylan H. Oaks jo Bara Devdutu ke parishad ki hai ko sunenge. Jiske baad Elder L. Whitney Clayton jo Sattar ke adhyaksha ke hai fir bhashan denge. Elder Clayton ke bhashan ke baad gayak mandali Come Unto Jesus ko gayenge.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Subjects
हम सब पर निर्भर हैं। कभी-कभी ये जो टॉक्स असाइन होता है हमको वो हम पवित्र आत्मा से बताया जाता है।
But just as Jesus did not teach how to overcome the mortal challenges or political oppression of his day, he usually inspires his modern servants to speak about what we must do to reform.
यीशु मसीह चाहता है कि आज हम क्या अपने विषय के बारे में बतलाएं। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे विषय के बारे में बताऊं कि यीशु मसीह के जो जिसने हमें सिखलाया है। बीज बोने वाले का नीति कथा मैथ्यू मार्क और लूक में पाया जाता है, कुछ अन्य कथाओं के साथ। ये उन नीति कथाओं में से भी है जो यीशु ने अपने चेलों को समझाया था। जो बीज बोया गया था वो था राज्य का वचन था। वचन परमेश्वर का वचन स्वामी और उनके सेवकों का शिक्षा जिन अलग अलग मिट्टियों पर वो बीज गिर रहे थे ये दिखलाता है कि हम मरणशील लोग किस तरह से शिक्षण को हासिल करते हैं और निभाते हैं। इसलिए जो बीज मार्ग के किनारे गिरे थे अब तक मरणशील धरती तक नहीं पहुँचे जहाँ वो उस उग सके। वो उन शिक्षकों की तरह है जो कठोर हृदय वाले या अप्रस्तुत लोगों को सुनाई देता है। मैं इनके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। मेरा संदेश उन सब के लिए है जो मसीह के चेलों बनने के लिए तैयार है। इस जीवन के दौरों हम मसीह के शिक्षणों का क्या करें? बीज बोने वाले का नीति कथा हमें स्थितियों और व्यवहार पर चेतावनी देता है जिस उसमें चार संदेश के बीच को पाए किसी व्यक्ति को इस फसल लाने को राज्य के लिए। कुछ बीज पथरीला भूमि पर गिरा या उनको बहुत मिट्टी ना मिली। यीशु ने समझाया कि इसका मतलब है वो लोग जिन्होंने जब वचन को सुना तुरंत ही आनंद से ग्रहण कर लिया मगर क्योंकि उनमें जड़ नहीं था जब दुख या तकलीफ आई वचन के कारण तुरंत ही वो ठोकर खाते रहे। सुनने वाले क्यों जड़ नहीं पकड़ते? यही होता है नए सदस्यों के साथ जो सिर्फ प्रचारकों के आकर्षित होते या गिरजाघर के विभिन्न विनेशताओं से या गिरजाघर सदस्य के फायदाओं से क्योंकि इन लोगों के विश्वास का जड़ उधारकर्ता पर नहीं। जब विपत्ति आती है वो ठोकर कर बेकार सकते हैं मगर जो लोग गिरजाघर में बड़े होते हैं लंबे समय के सदस्य वो ऐसी स्थिति में जा सकते हैं जो जहां उन्हें खुद में जड़ नहीं मिलेगी। मैंने ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जिनका समर्पण ठोस और आनंद नहीं होता है यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए। अगर हम सुसमाचार के शिक्षकों को अच्छी तरह नहीं जानते हैं और लगातार निभाते नहीं हम में से किसी का भी हृदय कठोर हो जाएगा जो पथरीला भूमि है धार्मिक बीचों के लिए। धार्मिक भोजन जरूरी है धर्म में आगे बढ़ने के लिए खासकर ऐसी दुनिया में परमेश्वर में कम विश्वास रखती है। इंटरनेट के आज जाने से वह विश्वास बढ़ाने वाले संदेशों की निंदा करती है। हमें आत्मिक सच्चाई को हमारे लिए बढ़ाने के लिए हमें हमारे विश्वास को बढ़ाना होगा और सुसमाचार में जड़ पकड़ने रहना होगा। जवान लोगों अगर ये शिक्षण बहुत आम है तो ये लो एक विशिष्ट उधार। अगर प्रभु भोज के चिन्ह बातों जा रहे हैं और तुम टेक्स्ट भेज रहे हो या फुसफुसा रहे हो या वीडियो गेम खेल रहे हो जो धार्मिक भोज लिए तुम अपने धार्मिक यादों को छोड़कर मार रहे हो। तुम खुद को कमजोर बना रहे हो। ये सब बुजुर्गों के लिए भी सही है। धार्मिक जड़ों को नष्ट करने वाला एक और विनाशी हो सकता है जो टेक्नोलॉजी से आएगा। बड़ा होता है पर उसके लिए नया नहीं है। जब हम सुसमाचार या गिरजाघर कर एक पहले से परखते हैं ये नजरिया केंद्रित होता है एक नेता के एक खास सिद्धांत या दस्तूर या देखे दोष पर और सुसमाचार के महान योजना को और उसके फसल के निजी और समुदायी आशीर्वादों को नजरदास कर देता है। प्रधान गोर्डन बी हिंकली ने इसके बारे में पहलू को पकड़ने की बात को अच्छी तरह से समझाया। उसने एक विवाहित सभा को राजनीति प्रशंसकों के बारे में बताया जो बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे उस वक्त के एक सुषमाचार सूचना के दौरान। उन्होंने कई बातें क्रोध में और अपने अपमानित करने के लिए कही थी। अंत में उसके कहा जरूर से इस तरह से बताया करना जो बहुत प्रदेश होगा है। दूसरी तरह से सुषमाचार में जमे रहना के लिए हमें आलोचना कम करनी चाहिए और हमेशा परमेश्वर के महान कार्य के भारी नजरिए पर ध्यान देना चाहिए। यीशु मसीह ने सिखलाया कुछ जड़ियां में गिरे और जड़ियां ने बदल कर उसे दबा दिया और वो फल ना लिया। उसने समझाया कि ये वो है जो वचन सुनते हैं और सुषमाचार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें सुषमाचार वचन को दबा देता है और वो निष्फल रहता है। ये वास्तव में हम सब के लिए एक चेतावनी है। मैं पहले धन पर धोखों पर कहूँगा, जहाँ पर भी हम अपने धार्मिक यात्रा में हमारे धार्मिक परिवर्तन की जो भी स्थिति होती है, हम सबको एक इस बहकावे का सामना करना पड़ता है जब व्यवहार या प्राथमिकताएं संपत्ति पाने, इस्तेमाल करने या अपने पर क्रेडिट हो जाए, हम उसे दुनिया से लगाव कहते हैं। जो सफलता पर विश्वास करते हैं वो धन के धोखे से पीड़ित हैं। धन रखना या बड़ी पगर स्वर्गीय कृपा का चिन्ह नहीं है और उसकी काम स्वर्गीय अंतोष का चिन्ह नहीं है। जब यीशु ने एक विश्वासी चेले को कहा कि वे आनंद जीवन पा सकता है अगर वो अपने सब कुछ गरीबों में बांट दे, उसने ये नहीं कहा कि धन क्षमा करने में बुराई है मगर जमा करने में बुराई है मगर बुराई है किस तरह से इससे प्रतिव्यवहार करते हैं। जबकि हम सब जानते हैं यीशु ने अच्छे समर्थन की बधाई की जिससे वह धन इस्तेमाल किया था। सब बुराई का जड़ धन नहीं है मगर धन से प्रेम है। मर्मन धर्मशास्त्र में उस समय के बारे में लिखा है परमेश्वर का गिरजाघर की प्रगति रखने लगी थी क्योंकि गिरजाघर के सदस्य संस्कारिक धन संपत्ति और व्यक्ति को वस्तु में मन लगा रहे थे। जिनके पास भी कई संसारिक संपत्तियां होती है धार्मिक को सबसे छोटे जानिया जिससे सुषमाचार के वचन का प्रभाव हमारे जीवन से निकलते हैं, वो जिसके बारे में यीशु ने कहा इस जीवन के चिंताओं और धन से सुविधाएं, ये बहुत ज्यादा है कहने के लिए कुछ उधारकर्ता उद्धार ठीक रहेंगे। एक बार जो यीशु ने अपने मुख्य चेलों को देता पीटर से कहता हुए, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमेश्वर को बता पर नहीं परंतु मनुष्य की बताव पर मन लगा रहा है। मनुष्य के चीजों को महत्व देने का मतलब है दुनिया की चेतावनी को महानता देना, परमेश्वर की बातों को हटा कर के हमारे कार्यों प्राथमिकताओं और हमारे धन्य में। जब हम उन चीजों के आदि हो जाते हैं इस जीवन के सुखों की और समर्पित हो जाते हैं जिससे परमेश्वर के अनमोल चुनने की शक्ति भंग हो जाती है। जब हम छोटे मोटे भेकाओं में से मोहित हो जाते हैं, ये हमें आनंद जरूरतों वाले चीज़ों से दूर ले जाते हैं और जब हम सोचेंगे कि हमारे सिर्फ अच्छा होना चाहिए, इससे हमारे अंदर वो नीति बची रुक जाएगी और हमें आनंद लक्ष्य से के लायक बनती है। हम इस जीवन के चेतावनी से गिर जाते हैं जब हम भविष्य के डर से शिक्षित हो जाते हैं। परमेश्वर में उनके विधाओं को करता है। 25 वर्ष पहले मेरे प्रिय बीवायु शिक्षक ह्यू के द्वारा पूछा गया था क्या दुनिया की और हमारी जिम्मेदारी के बीच में कुछ है क्या हम कर सकते हैं इस गिरजाघर में? उनका जवाब था, गिरजाघर में यही होता है, आ रहा है ना? यहाँ हमें तैयार रहना चाहिए किसी का अपमान करने के लिए, तुम्हें खतरा मोल लेने के लिए का इच्छा रखनी चाहिए। यही पर विश्वास आती है। हमारा जिम्मेदारी एक परीक्षा होनी चाहिए, उसके कठिन होना चाहिए और दुनिया के संबंध में असंबंधित होना चाहिए। इस सुसमाचार की आवश्यकता की पुष्टि BYU में ठोस की गई थी महीनों पहले, नाम छोटे कैथोलिक नेता चार्ल्स जे चपरू द्वारा, जिन्होंने LDS और कैथोलिक समाजों में जो समझाए सामान्य चेतावनी की पर बातें करते हुए, जैसे विवाह और परिवार हमारे लिंग पर बताते, मानव जीवन की शिक्षा पर और धार्मिक आज़ादी पर, उन्होंने कहा, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम अपने विश्वास के ही तरह लिए ये एक प्राथमिकता होना चाहिए, ना सिर्फ हमारे निजी या पारिवारिक जीवन में, पर हमारे गिरजाघरों, राजनीतिक चुनाव पर और जिस और सभी जो हम करते हैं। ये है क्योंकि वो आवश्यक है, उसने और बतलाया, कैथोलिक अनुभव से सीखो। हम कैथोलिकों का विश्वास है कि हम समाज में कामिर बने रहें, मगर एक छोटा सा अंतर है समाज और कामिर बनना और समाज द्वारा हजम किया जाना। उद्धारकर्ता का चेतावनी है था कि दुनिया के चेतावनी कई हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को ना गायब कर दे। हमें चेतावनी देती है कि हम अटल रहें, हमारे दिल भी अटल रहे परमेश्वर के आज्ञाओं पर और उनके गिरजाघर के निर्देशन पर। उद्धारकर्ता के उदाहरण में हमें इस नीति कथा को भूमि का नीति कथा सोचने में मजबूत करता है। भूमि कितनी अच्छी तरह उस पर निर्भर है, हमें हम में से जिसका दिल सुसमाचार के बीज से वाकिफ है। बीज बोने वाले का नीति कथा समाप्त हुआ। उद्धारकर्ता ने जब उस बीज के बारे में बताया, अच्छी भूमि पर गिरा और फल लाए अलग अलग मात्र में। हम खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं और अच्छी भूमि और अच्छा फल बनने के लिए? यीशु ने बतलाया कि अच्छी भूमि में वो है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभलते रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हमारे पास सुसमाचार वचन का बीज है। ये हम सब पर निर्भर है कि हम चुने कि हम क्या करके अपने भूमि को अच्छे और फल को ज्यादा करें। हमें यीशु मसीह के सुसमाचार में जड़ पकड़ते और धर्म परिवर्तित होना चाहिए। हम जानते हैं कि हम परिवर्तित हो गए हैं प्रार्थना, धर्मशास्त्र अध्ययन, सेवा और प्रभु भोज लगा कर लेने के लिए कि उनकी आत्मा हमारे साथ रहे। हमें हृदय में महान परिवर्तन भी लाना चाहिए जो बुरे इच्छाओं और स्वार्थी मतलबों को परमेश्वर के प्रेम और उनकी और उनके बच्चों के सेवा से बदलते हैं। मैं इन बातों की सच्चाई में उद्धारकर्ता यीशु मसीह की गवाही देता हूँ, जिसके शिक्षाओं और रास्ते दिखलाते हैं, जिसके प्रायश्चित से ये सब मुमकिन है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
पिछले जनवरी 7 साल के सैला गुत्सलर और उसके परिवार फ्लोरिडा से इलिनॉइस के पर्वत हवाई जहाज में जा रहे थे। सैला का पिता चला रहा था। जैसे रात हुई, हवाई जहाज में मशीनी समस्या उत्पन्न हुई और वो बहुत अंधेरे में दुर्घटनाग्रस्त हुई। केंटकी पहाड़ों में उसकी कलाई की टूट गई और दुर्घटना में उसे चोट और खरोच आई और उसके जूते खो गई. टेम्परेचर 38 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत ठंड था. बारिश की ठंड वाली केंटकी रात और सैला सिर्फ छोटे पंथ के एक टी शर्ट और एक मोजा पहने थी. वो अपने माता और पिता के लिए वो रो रही थी और किसी ने जवाब नहीं दिया. बहुत हिम्मत जुटा कर वो नंगे पैर पांव चले लगी गर्मी इलाके में मदद के लिए. छोटी नदी को पार करते, नाला पार करते और भादुरी के ब्लैकबेरी से एक छोटी पहाड़ी के ऊपर से सैला जो को दूर एक ज्योति दिखी. लगभग एक मील दूर अंधेरे और झाड़ियों में थोर करते हुए वो उसे ज्योति की ओर चल पड़ी. सैला शिक्षित थी. उसे जल्द अस्पताल ले जाया गया और ठीक होने में मदद मिलेगा. सैला बच पाई थी क्योंकि उसे दूर की एक ज्योति दिखा था. उस ग्रामीण इलाके के या उस पर किया संकट आ गया था और उसे कैसे चोट लगा था. कठिन है कल्पना करना कि कैसे सैला उसने उस रात को कितना सब किया, मगर हम इतना जानते हैं कि उसने उस दूर के घर की ज्योति में बचाव का सहारा बचाना. हम में से बहुत कम लोग सैला के जैसे मुश्किल को अनुभव करेंगे, मगर हम सबको किसी न किसी समय अपने आत्मिक जंगल से गुजारना पड़ेगा और अपने कठिन भावना के सफर को जलेंगे. उन्हें चरणों में कितना भी अंधेरा की कितना अश्लील लगे, अगर हम ढूंढेंगे वहाँ हमेशा एक आत्मिक ज्योति दिखेंगे जो हमें पुकारेगा, हमें आशा देगा, बचाव और सहायता के लिए. वो ज्योति सभी मानव जाति के उदारकर्ता से चमकेगा और जगत की ज्योति है. आत्मिक ज्योति का महसूस करने और वास्तविक ज्योति के देखने में अंतर है. उदारकर्ता ने आत्मिक ज्योति को महसूस करना हमारा विश्वास करने की इच्छा से शुरू होता है. परमेश्वर चाहता है हमें विश्वास करने की इच्छा लानी जरूरी है. भविष्यवक्ता आलमा ने सिखलाया, अगर हम जगाओ और अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत करें और विश्वास के एक अंश भी काम में लाए और विश्वास करने की इच्छा भी की, तब इस इच्छा को अपने अंदर तब तक कम करने के दो जब तक कि तुम उदारकर्ता के बातों के एक अंश पर भविष्यवक ना लग सको. अलमाने की इच्छा करने विश्वास की और अपने हृदयों में उदारकर्ता के शब्दों के लिए जगह देने हमें याद दिलाता है कि यकी और विश्वास लाए. पहले पाने से पहले हम मांगते हैं, मिलने से पहले हम ढूंढते हैं, खुलने से पहले हम उदारकर्ता है, क्योंकि जो को मांगता है वो पाता है और जो कोई ढूंढता है उसे मिलता है. कोई और जोशीला दलील हमें विश्वास करने के लिए नहीं आया, पर सिर्फ खुद उदारकर्ता से उनके तरीका प्रचार को दौरान. यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु याद मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो परंतु उसका कामों का विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझे में है और मैं पिता में हूँ. हर दिन हम एक परीक्षा का सामना करता है. वो हमारे जीवन का परीक्षा है. क्या हम उन पर विश्वास करने की चुनेंगे या क्या हम विश्वास करने के इनकार करेंगे और अंधेरे में अकेले सफर करेंगे. उदारकर्ता अपने सुसमाचार के ज्योति की तरह प्रदान करता है. दुर्घटना के बाद सैला के पास एक चुनाव था. वो हवाई जहाज के पास अंधेरे में अकेले और डरी हुई रह सकती थी, मगर रात बहुत बाकी थी. उसने दूसरा चुनाव किया. सैला ने एक पहाड़ पर चढ़ी और वहां से दूर के ज्योति देखा. हंसते हंसते जब रात में वो ज्योति की और मर्ग ढूंढ रही थी, वो उज्ज्वल होता गया. जब भी ये ज्योति देख सकती थी, सैला के पास सबूत था कि वो सही मार्ग पर है. वो ये महीन जानती थी कि वो इस किस चीज़ को ज्योति है, मगर वो खुशी उसकी और चलती रहे अपने ज्ञान के मुताबिक, भरोसा और आशा करते हुए कि वो उस फिर देखेंगे अगर वो सही दिशा में गया। हमारे जीवन भी इसी तरह हो सकती है। ऐसा कुछ समय होगा जब हम छोटा लगा होगा, हम थके थे, और जब हमारा जीवन अंधेर का और ठंडा महसूस कर होगा। अगर हमारे अंदर विश्वास करने की चाहत है, अगर विश्वास की इच्छा है, अगर हम विश्वास करने की चुनते हैं, तब उद्धारकर्ता की शिक्षण और उदाहरण हमें आगे का रास्ता दिखलाएंगे। जिस तरह सैला को विश्वास करना था कि उस दूर की ज्योति में सुरक्षा मिलेगी, उसी तरह हमें उद्धारकर्ता की दिव्य सच्चाई, उनकी आनंद ज्योति और उनके चंगाई की दया के लिए अपने हृदय को खोलने का चुनाव करना है। सदियों से भविष्यवक्ताओं ने हमें प्रोत्साहित किया है कि और हमें मसीह में विश्वास करना है। उनके उपदेशन में एक दो सच्चाई है। परमेश्वर हमें विश्वास करने के लिए जबरदस्ती नहीं करता है, बल्कि वो हमें विश्वास करने के निमंत्रण जीवित भविष्यवक्ता और देवताओं के शिक्षा धर्मशास्त्र द्वारा। हम चुनाव करने की हम अपने आत्मिक जैसे एहसास से पहचाने उसे आत्मिक ज्योति को जिसे वो अपने पुकारता है। उस पर हमारे अन्य सब निर्णय टिके हैं। परमेश्वर हमें विश्वास करवाता नहीं, ना वो हमें गायों को पालन करवाता है, तो भी उसका पुकार कि हम उन पर विश्वास करें, उस विश्वास की आशा को आजमाए और उनके शब्दों के जगा दें। जैसे मसीह ने कहा, मैं मक्षी हूँ कि पिता सभी मनुष्य को सभी जागे आगे देता है कि हम पश्चाताप करें और मुझ में विश्वास करें। या कि और गवाही और विश्वास शांत सिद्धांत नहीं है, वो सिर्फ ऐसा ही हमारे साथ नहीं घटा, यकीन हो हम चुनते हैं। हम अचानक उद्धारकर्ता और उनके सुसमाचार में विश्वास नहीं कर लेंगे, जैसे कि हम प्रार्थना या दसवां हिस्सा अचानक नहीं बढ़ते। हम खुद चुनते हैं विश्वास करने को। सैला नहीं जान सकती है कि अगर वो जड़ियों को बगल करेगी क्या उसे आगे निकलने का मौका मिलेगा। घुटने के बल गया और खरोश आया उस जब तक हो दूर की ज्योति तक ना पहुंची। एक बार जब उस दिखा गया, उसे बहुत संघर्ष किया उस तक पहुंचने के लिए। उसी तरह हमें भी आशा को मौका देना चाहिए कि हम आत्मिक ज्योति पाएंगे विश्वास करने की संदेश चुनकर। हमारे क्रिया हमारे यकीन का सबूत है और हमारे विश्वास का पदार्थ है। प्रार्थना करने और धर्मशास्त्र पढ़ने से हमें विश्वास करना चुनते हैं। उपवास रविवार को पवित्र दिन मानकर मंदिर में भक्ति करने से और धर्मशास्त्र पढ़ने से हम विश्वास करना चुनते हैं। हम विश्वास करना चुनते हैं जब हम प्रस्ताव करते हैं दिव्य माफी और चंगाई वाला प्रेम ढूंढते हैं। कभी कभी आत्मिक चीज़ों में प्रगति धीमी लगती है या रुकने लगती है। कभी कभी हम सोचेंगे कि रास्ता छूट गया, कि हमसे गलती हो गई है, या उद्धारकर्ता ने ढूंढने की हमारे सबसे बेहतर कोशिश नाकाम रही है। अगर हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, कृपया हार मत मानो, कभी नहीं। उन पर विश्वास करते रहे, उनके सुसमाचार पर, उनके गिरजाघर पर, उन पर कार्यों को अपने उस याकी के साथ मिलाओ। उन चुनाव में जब तुम्हारे विश्वास की ज्योति धीमी होंगे, उद्धारकर्ता के प्रेम और महिमा का आशा करो। मैं वादा करता हूँ कि वो तुम्हें पाने के लिए तैयार है। समय अपने पर तुम देखोगे कि तुम्हारा ये चुनाव सबसे बेहतर है। तुम्हारा उन पर विश्वास करने का साहसी निर्णय तुम्हें बहुत से और हमेशा आशीर्वाद देगा। मैंने अपने जीवन में उद्धारकर्ता के दयालु प्रेम अनुभव किया है। मैंने उन्हें अपने अंधेरे की छेनों में ढूंढा है और वो मेरी और बड़ा है अपने चंगाई की ज्योति के साथ। मेरे जीवन का महान खुशहाली राह है मेरी पत्नी कैथी के साथ सफर करना दुनिया भर के गिरजाघर सदस्यों से मिलने के लिए। ये अनोखे अवसरण से मैंने हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम को सीखा है। उसे मैंने खुशहाली के अंगणित संभावना को जाना है जो उनका आशीर्वाद बनता है जो प्रभु यीशु मसीह के शिक्षण पर चलत है। मैंने सीखा है कि उन पर और उनके मुक्ति देने वाले शक्ति और विश्वास करना सच्चा रास्ता है इस दुनिया में शांति और अपने वाला दुनिया में अंत जीवन पाने का। मैं गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह हम सब के लिए ज्योति और आशा को स्रोत है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब उन पर विश्वास रखने की चुने। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
We thank all who have participated and expressed.
Un sab sabi one wala aur moment apne kal gayak mandali ko sabha sundar sangeet ko pradan karne ke liye hamari hai. Hamare antim bhashan karta is baithak ke liye hoga Elder Elton Perry jo Bara Dev Dito ko ki parishad hai. Uske tipaniyon ke baad gayak mandali sabha ko samapt karengi. I believe in Christ ke gaakar samapti par Pratna Elder Larry J. Ekohawk, jo sattar ka hai, dwara di jayegi.
Last November, I had the privilege.
Pichle November mera saubhag tha. Pradhan Henry Bearing aur Bishop Jared Kose ke saath Rome, Italy ke Vatican mein vivah aur parivar par ek bhashan mein amritrit hona. Wahan 14 vimaan धर्म के धार्मिक प्रतिनिधि और सात में से छह महाद्वीपों से आए थे सभी के अपने विश्वास को बदलाने के लिए बुलाया गया था कि आज के दुनिया में परिवार में क्या हो रहा है पोप फ्रांसिस ने सभा के पहले भाग से घोषणा से शुरू किया हम आज एक आश्चर्य संस्कृत में जीते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा लोग विवाह को त्याग रहे हैं एक सार्वजनिक प्रतिविधा के तरह कायदे और महतिक में ये बदलाव को अक्सर आजादी कहते हैं मगर वास्तव में इसे कहीं मानव जाति के अंतिमिक और समीर मारिक की तभी ही मिली है खासकर गरीब और सबसे कमजोर पर वही इस संकट के ज्यादा हस्त पाते हैं उबती पीती को लेकर उसने कहा कि यह जरूरी है कि वो अपने आप को यह ना समझे कि कुछ चीजें जैसे वजह कुछ समय के होने चाहिए पर क्रांतिकारी बने सच्चाई और आनंद प्रेम को ढूंढने के साहस रखें और आम बात की विरोध करने आशा होना चाहिए यह भाषण धार्मिक नेताओं के साथ तीन दिनों के पुरुष और महिलाओं के बीच विवाह के प्रश्नों और शिक्षा के बाद दिया गया था जब मैं इतना बड़े विश्वभर के धार्मिक नेताओं के दल के सुन रहा था मैंने सुना कि वे एक दूसरे से सहमत थे और वे एक दूसरे के विवाह के पवित्रता और परिवार के आवश्यकता को समझ को मूल भाग होने के विश्वास को सहयोग दे रहे थे मैं उसके संग इस शक्तिशाली सम्मता और एकता महसूस किया कई लोगों ने इस एकता को देखा और वर्णन किया और उन्होंने ऐसा कई तरीकों से किया मेरे प्रशंसिता था जब ईरान के एक मुस्लिम शिक्षक ने दो पर हमारे खुद के परिवार के अनुरूप घोषणा में से दोबारा भाषण के दौरान मैंने देखा कि जब अलग अलग विश्वास और जाति और धर्म एक होते हैं विवाह और परिवार पर वे मानते हैं व्यवहारों और वचनवादों में भी एक होते हैं जो परिवार दिल से प्रवृत्ति रूप से जुड़ता है मेरे लिए देखना योग्य था कि कैसे विवाह और परिवार केंद्रित प्रतिनिधि किसी राजनीतिक अधिक या धार्मिक मतभेद से महान था जब बात पति पत्नी से प्रेम और आशा चेताओं और बच्चों के सपनों के होती है हम सब एक सम्मान है इतना शानदार था विश्वास भर के पेशाकर्ताओं के साथ संभाव में रहना जब वे एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह के आवश्यक पर एहसास बदला रहे थे हर एक भाषण के बाद अन्य धार्मिक नेता गवाही देते हैं प्रधान हेनरी बियरिंग के द्वारा सभा के अंतिम गवाही दिया गया था उसने शक्तिशाली गवाही पेश की कि एक वचनबंध विवाह की सुंदरता पर और हमारे आनंद परिवारों के वादा किया आशीर्वाद के विश्वास पर प्रधान हेनरी आयरिंग की गवाही सही अंत तक उन तीन खास दिनों के सभा का। अब तुम पूछ रहे होगे, अगर ज्यादा लोग परिवार प्राथमिकता और विश्वास में समानता देते हैं, अगर वे सभी धार्मिक और जल्दी जाति विवाह के सही मायने पर समर्थ है, और अगर वे सभी मानते हैं कि कर्म और पारिवारिक सिरतों के अनमोल कहते हैं, तब हम कैसे अलग हैं? यीशु मसीह के गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के कैसे अपने आप को बाकी की दुनिया से अलग और विभिन्न कहलाएगा? ये है जवाब। जब अनोखा था देखना और महसूस करने के इतना खोज सामान्य है हमारे और बाकी के दुनिया के साथ परिवारों को लेकर, सिर्फ हमारे पास आनंद दृश्य और पुनस्थापित समाचार है। पुनस्थापित समाचार क्या लाता है? विवाह और परिवार के चर्चा में इतना बड़ा आय और इतना उपयुक्त कि उसकी ज्यादा गौर नहीं किया जा सकता। हम उस विषय को आनंद बनाते हैं, हम विवाह को वचनबद्ध बनाते और पवित्रता को एक और स्तर तक ले जाते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि परिवारों की धरती से पहले सी और अनंतता तक कहानियां रहेगी। ये सिद्धांत रुथ गार्डनर के परमित गीत फैमिलीज कैन बी टुगेदर फॉरएवर के लीक में इतनी सरलता, शक्ति और सुंदरता से सिखला गया। सिर्फ एक चंद के लिए रुकिए और सोचिए दुनिया भर की उन प्रारंभिक कि बचनों के बारे में जो अपने मंत्र भाषण में ये शब्द गा रहे हैं, एकदम जोर जोर से, एक जोश के साथ जो सिर्फ परिवार से प्रेम से जगता है। परिवार हमेशा साथ रह सकता है स्वर्ग के पिता के योजना के जरिए। मैं हमेशा परिवार के साथ रहना चाहता हूँ और प्रभु ने मुझे दिखाया कैसे रहना। हमारे पुनस्थापित समाचार का पूरा ज्ञान परिवार का विवाह के नए और आनंद वचन के केंद्रित है। यीशु मसीह के गिरजाघर अनंत दिनों के संतों के में हम मनशीलता से पहले से जीवन में विश्वास करते हैं, जहां हम परमेश्वर हमारे स्वर्ग पिता के अंतिम बच्चों के तरह थे। हम विश्वास करते हैं कि हम उनके परिवार के सदस्य थे और है। हम विश्वास करते हैं कि विवाह और परिवार संबंध खबर से आगे जाते हैं कि जो विवाह आ है सही अधिकार के द्वारा आगे मंदिरों में संपन्न होता है, वो आने वाले दुनिया में भी जायज रहेगा। हमारे विवाह संपूर्ण में जब तक मृत्यु ना अलग करेंगे संबंध नहीं रहते हैं और उसके वजह कहते हैं इस समय और सारे आनंद के लिए। हम ये भी विश्वास करते हैं कि मजबूत पारिवारिक सिर्फ एक स्तर समझ कर मुख्य नहीं है, एक स्थिर इकोनॉमी और एक स्थिर मूल्य शिक्षा पर, ये तो अनंतता और परमेश्वर के राज्य और शासन का कभी मूल्य है। हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग के स्थानता और स्थान परिवार और विस्तृत परिवारों पर अंतर्कृत होनेंगे। हमारे विश्वास की वजह है कि विवाह और परिवारों आनंद है कि हम एक गिरजाघर चाहते हैं कि एक निर्देशक रहे और दुनिया के सम्मेलनों में भाग लेने उन्हें मजबूत करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो बहुत धार्मिक होते हैं वही समय मूल्य और लंबे समय के विवाह और मजबूत परिवार रिश्तों को जानते हैं। बहुत सारे आम लोगों ने कहा है कि एक वचनबद्ध विवाह और पारिवारिक रहने सहन सबसे समझदार, सबसे अधिक खुशहाल तरीका है जीने का। किसी ने भी अभी तक ऐसा बताया तरीका नहीं बदलाया जिससे आबादी पीढ़ी की देखभाल एक घरेलू स्थिति में हो सके जहां बच्चों के साथ माता पिता हो। क्या विवाह और परिवार जरूरी है? सभी जगह जनता मत गणशा धरती घर विवाह की सबके बीच रास्ता और आशा है। अभी हाल ही पीढ़ी में भी जहां हम इतना ज्यादा चुने हुए अकेलेपन निजी आजादी और विवाह के वजह साथ लखने में है। जब हम विवाह कर लेते हैं और बच्चे हो जाते हैं सही समझते मनुष्य के बच्चे के दिखलाते देती है। परिवार में विश्वास करने वाले इंसान होने के नाते जहाँ जहाँ चाहिए जहाँ हम जिए या जो भी हमारा धर्म हो हम ज्यादातर एक जैसे संघर्ष समाधान और एक जैसे आसन चिंते और अपने देखते हैं अपने बच्चों के लिए। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स के लेखक डेविड ब्रुक्स ने कहा लोग देख ठीक नहीं होते अगर उन्हें ज्यादा नीची आजादी मिलती है और अपने चुनाव का चीज करने के लिए वे ठीक होते हैं जब उन पर जिम्मेदारी लाद दी जाए नीचे चुनाव परिवार परमेश्वर नौकरी और देश के बात कर। एक समस्या है कि ज्यादा समाचार साधन और महान मनोरंजन जो दुनिया में बनता जाता है उसमें ज्यादातर लोगों के चुनाव नहीं देते। पता नहीं किस लिए बहुत ज्यादा हमारे टीवी फिल्में संगीत और इंटरनेट में प्रस्तुत चीजें कम लोगों का नजरिया पेश करती है और उसके अधिक लोगों का नजरिया जैसे देखकर अनैतिक और मूल्य की कमी फुतिला और मार डर से लेकर शोक के लिए यहाँ संबंध तक ऐसे मीडिया और इंटरनेट के राज्य के दुनिया में बहुत कठिन है जिम्मेदारी बच्चों को पालना और विवाह और परिवारों के साथ रखना। चाहे मीडिया और मनोरंजन दुखनियों जो भी कहे और काफी लोग के विवाह और परिवार का नजरिया गलत हो तो भी अधिकार लोग अब भी मानते हैं कि विवाह एक पुरुष और महिला के ही बीच में होना चाहिए। वो विवाह में ईमानदारी में विश्वास करते हैं और वो इस विवाह के वचन में विश्वास करते हैं बीमारी और स्वास्थ्य में और जब तक मृत्यु ना अलग करे। हमें कभी ना कभी अपने आप को याद दिलाना चाहिए जैसे मुझे रोम में याद आया उस आश्चर्यजनक और सभ्यता बहुचाने वाली सच के विवाह और परिवार अब भी कई लोगों के अभिलाषा और आदेश है और कि हम अकेले नहीं हैं इन विचारों में। कभी इतना मुश्किल नहीं था नौकरी परिवारों और निजी जरूरतों के बीच सुलातों में। इसीलिए गिरजाघर परिवार को मजबूत करने वाले दलों और धर्मों के बीच कोशिश करने वचन लेता और निर्देश प्रदान करता है। इसलिए हम मीडिया और सोशल मीडिया में बदलाते हैं हमारे परिवार केंद्रित आदेश। इसलिए हम हमारे इतिहास और विस्तृत परिवार के लेख सभी देशों के साथ बांटते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज को सुनी जाए इन सैकड़ों गलत कैदों के बीच जो चाहते हैं कि वे परिवार वाले संस्था को भाग करे और जो परमेश्वर ने खुद आयोजित किया है। हम अपने आवाज सुनाई देते चाहते हैं कि परिवारों कितने खुश हो सकते हैं। हमने दुनिया भर में आवाज उठाते हैं कि विवाह और परिवार इतने आवश्यक है। क्या विवाह और परिवार मायने रखता है और क्या ये सदा जरूरी रहेगा? मेरे भाई और बहनों पुनस्थापित समाचार विवाह और परमेश्वर के एहसास पास क्रियान करते। यहाँ पर हम अन्य केंद्र के लोगों के एक सकते हैं जहाँ हमें पूरी दुनिया से समानता मिलेगी और विभिन्नता दिखलाने के मौके मिलने औरों को गिरजाघर तक आकर्षित करने के लिए उन्हें सिखाने और दिखाने के लिए कि एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह का बहुत मान है। आओ मैं संपन्न करूं अपने गवाही पेश करके, और मेरे वर्ष इस धरती पर मुझे मौका देता है कि ये कहना के लिए कि जितना जो बूढ़ा होता है उतना ही वे जानता है कि परिवार जीवन का केंद्र है और आनंद खुशहाली का चाबी है। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों, अपने नाती पोतों और पर नाती पोतों और सभी चहेरे भाई बहन और ससुराल के लोग और विस्तृत परिवार को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे खुद के जीवन को इतना भयपूर और हान आनंद बनाया है। इस आनंद सच्चाई की मैं अपना पवित्र गवाही देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Our dear Heavenly Father,
हे हमारे स्वर्ग पिता, हम अपने सर को झुकाकर धन्यवाद देते हैं जो आपने ये योजना बनाया है और खास करके हमारे दाता प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप को बलिदान दिया हमारे लिए. हम धन्यवाद देते हैं जीवित प्रॉफिट के लिए, प्रेजेंट थॉमस एस मॉन्सन के लिए और सभी प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स के लिए जो उनके साथ सेवा करते हैं. हम प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ हो ताकि उनको मजबूती दे. हम आभारी हैं जो हमने अभी समाचार मिला है और जो आपके सेवक से मिला है. अब हम जो अंत में आ गए इस सेशन के, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके आत्मा हमारे साथ हो जो जो काम हम करें. हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से है, आमीन.
This has been a broadcast of the 185th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.